एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम जिस किताब पर बात करने वाले हैं वो है लारा लव हार्डिन की काफी चौंकाने वाली संस्मरण द मेनी लाइव्स ऑफ मामा लव, ए मेमोयर ऑफ लाइंग स्टीलिंग राइटिंग एंड हीलिंग। ये कहानी देखिए सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये उन अंधेरों और उम्मीदों की कहानी है जो शायद हम सबके अंदर कहीं ना कहीं छुपी होती हैं।
बिल्कुल,
हमारे पास इस किताब के जरूरी हिस्से और उसका एक सारांश है, और हमारा इरादा है कि इस असाधारण जीवन यात्रा से कुछ असली गहरे सबक निकालें। आप सोचिए, एक महिला जिसका जीवन बाहर से एकदम सही दिखता है, अच्छी माँ है, कामयाब है, यहाँ तक कि वो जानवरों के मन की बात समझने वाली एक पेट साइकिक भी हैं।
हाँ, ये पेट साइकिक वाला पहलू भी बड़ा दिलचस्प है।
और फिर कैसे वो नशे की गिरफ्त में आती हैं, अपराध करती हैं, जेल जाती हैं, और फिर वहां से उठकर एक बेस्ट सेलिंग लेखक, एक नामी लिटरेरी एजेंट और सुधार की आवाज बनती हैं। ये सफर ही अपने आप में मतलब कमाल का है।
हाँ, कमाल का तो है ही, और बहुत जरूरी भी, क्योंकि ये कहानी ना कई परतें खोलती है। ये सिर्फ किसी के गिरने और फिर उठ खड़े होने की वैसी सीधी साधी कहानी नहीं है। ये पहचान पर, शर्मिंदगी के बोझ पर, समाज हमसे क्या उम्मीदें रखता है और हमारे जो सिस्टम है वो कैसे काम करते हैं, इन सब पर एक बहुत ही कच्चा ईमानदार नज़रिया पेश करती है। और ये दिखाती है कि इंसान में खुद को तबाह करने की कितनी क्षमता है, पर साथ ही खुद को फिर से मतलब पूरी तरह से गढ़ने की एक अविश्वसनीय ताकत भी होती है।
सच में ये आत्मविनाश और फिर एक तरह के पुनर्निर्माण की कहानी है।
तो चलिए सफर को थोड़ा शुरू से देखते हैं। हार्डिन का शुरुआती जीवन, जैसा आपने कहा, बाहर से एकदम परफेक्ट, एक सुंदर घर, बच्चे, पति।
और वो अनोखा करियर भी।
हाँ, पेट साइकिक वाला।
लेकिन इस सब के पीछे वो जो हमेशा परफेक्ट दिखने का दबाव था, वो कितना भारी रहा होगा।
बिल्कुल, और ये परफेक्ट होने का मुखौटा ही कहीं ना कहीं उनके लिए एक जाल बन गया था, एक पिंजरा। स्रोतों से ये साफ पता चलता है कि इस भारी चमक के नीचे एक गहरा खालीपन था, एक असंतोष था, और शायद यही वो जमीन थी जिस पर बाद में नशे की लत पनपी। और वो पेट साइकिक वाली बात भी सोचने लायक है। ये शायद उनकी एक अंदरूनी क्षमता दिखाती है, लोगों की या जानवरों की अनकही जरूरतों को समझने की,
हाँ, ये हो सकता है।
और शायद यही समझ बाद में उन्हें दूसरों की कहानियों को आवाज देने वाली एक अच्छी घोस्ट राइटर बनाने में मददगार साबित हुई।
कहानी में जो बड़ा मोड़ आता है वो है चौथे बच्चे के जन्म के बाद। उन्हें दर्द के लिए विकोडीन दी जाती है।
जी, एक आम प्रिस्क्रिप्शन।
हाँ, पर ये दवा सिर्फ शारीरिक दर्द नहीं मिटाती, ये उनके अंदर की वो जो कमी की भावना थी उसे भी जैसे शांत कर देती है। उन्हें एक झूठा ही सही पर एक आत्मविश्वास मिलता है।
एक तरह का भावनात्मक पेन किलर बन गई वो दवा।
बिल्कुल, और यहीं से वो फिसलन शुरू होती है, नशे की लत जो जल्द ही हीरोइन तक पहुंच जाती है।
बहुत तेजी से।
और फिर उस लत को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत, रोजाना सैकड़ों डॉलर, और इसके लिए वो अपराध का रास्ता चुनती हैं।
और ये भी कोई साधारण अपराध नहीं, वो अपने ही पड़ोसियों के मेलबॉक्स से चेक, क्रेडिट कार्ड चुराने लगते हैं।
सोचिए जरा, अपने ही पड़ोसी।
हाँ, उन पर कुल 32 अपराधों के आरोप लगे थे, खासकर पहचान की चोरी यानी आइडेंटिटी थेफ्ट के। और यहाँ एक मनोवैज्ञानिक बात भी सामने आती है।
हाँ, क्या?
वो अपने बचाव के लिए मन ही मन में एक काल्पनिक बुरा पड़ोसी गढ़ लेती हैं, सारा दोष उस पर डाल देती हैं ताकि वो खुद की नजरों में अच्छी माँ बनी रह सकें। ये एक तरह का खुद को धोखा देना था।
ये दोहरा जीवन, मतलब एक तरफ बच्चों के स्कूल की पीटीए मीटिंग्स, एक आदर्श माँ,
जी,
और दूसरी तरफ चोरी छुपे जाली चेक कैश करना, ये कैसे मुमकिन हो पाया होगा?
ये दिखाता है कि लत कितनी हावी हो सकती है। इंसान की सोच, उसके फैसले लेने की क्षमता, सब धुंधला जाता है। वो परफेक्शन बनाए रखने की जिद और नशे की जरूरत, इन दोनों ने मिलकर ये दोहरा जीवन कुछ वक्त तक चलाया।
लेकिन सच कब तक छिपता?
वही हुआ, एक दिन पुलिस घर पे छापा मारती है, सब कुछ सामने आ जाता है, परिवार, दोस्त, पूरा समुदाय, सबके सामने।
वो पल तो पूरी तरह टूटने वाला रहा होगा, जिल्लत, तबाही।
बिल्कुल, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, सांता क्रूज काउंटी जेल भेजा जाता है, और वहां वो लारा हार्डिन नहीं, सिर्फ एक नंबर है, इनमेट W13374। पहचान खत्म।
ये तो जीवन का सबसे निचला स्तर था।
हाँ, शायद, लेकिन कहते हैं ना, अंधेरे के बाद ही सुबह होती है। जेल की उसी निराशा भरी दुनिया में जहां इंसानियत छीन ली जाती है, एक छोटी सी उम्मीद की किरण दिखती है। साथी कैदी उनकी देखभाल करने वाली आदत को देखकर उन्हें मामा लव कहने लगते हैं।
मामा लव?
हाँ, और ये सिर्फ एक निकनेम नहीं था, ये बहुत गहरा था। ये उनकी इंसानियत की पहचान थी, उनके अपराध की नहीं। ये उस परफेक्ट मुखौटे के पीछे जो असली देखभाल करने वाली लारा थी, उसकी एक तरह से पहचान थी।
ये एक नई शुरुआत थी एक तरह से।
बिल्कुल, एक नई पहचान का अंकुर फूटा उस नाम से।
फिर रिहाई हुई, लेकिन बाहर की दुनिया भी आसान नहीं थी। एक सजायाफ्ता अपराधी के लिए समाज में जगह बनाना
बहुत मुश्किल। वो शर्म को एक भूत कहती हैं जो पीछा नहीं छोड़ता, नौकरी नहीं, भरोसा नहीं।
लेकिन फिर उन्हें डग एब्राहम्स की लिटरेरी एजेंसी आइडिया आर्किटेक्ट्स में एक छोटी सी इंटर्नशिप मिलती है।
हाँ, एकदम निचले स्तर पर, कचरा फेंकना, फोन उठाना और अपना अतीत छिपाकर।
और यहीं से कहानी फिर घूमती है। वो अपनी मेहनत, अपनी समझ, कहानियों की पकड़, इन सबके दम पर आगे बढ़ती हैं।
हाँ, वो इंटर्न से एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, फिर एजेंट, और फिर उसी एजेंसी की प्रेसिडेंट और सह संस्थापक बन जाती हैं। ये सुनने में फिल्मी लगता है, पर ये सच है।
अविश्वसनीय।
उन्होंने दलाई लामा, डेसमंड टूटू, ब्रेने ब्राउन, ओपरा विनफ्रे जैसे बड़े नामों के साथ काम किया और खुद भी बेस्ट सेलिंग लेखक बने, अक्सर घोस्ट राइटिंग करके।
तो आज उनकी विरासत दोहरी है।
Yes.
एक तरफ साहित्य जगत की कामयाब हस्ती
और दूसरी तरफ क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म और दूसरे मौके की एक बहुत मजबूत आवाज। वो अपने अनुभव से उन लोगों के लिए लड़ रही हैं जिन्हें समाज अक्सर नजरअंदाज कर देता है।
उनके जीवन और काम से जो एक जीवन दर्शन उभरता है, उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्या मुख्य बातें हैं?
हाँ, अगर हम उनके जीवन और लेखन को देखें तो तीन मुख्य स्तंभ नजर आते हैं। पहला है जिसे वो कहती है रेडिकल अकाउंटेबिलिटी।
रेडिकल अकाउंटेबिलिटी मतलब?
मतलब जो किया है उसकी पूरी जिम्मेदारी लेना बिना किसी बहाने के। वो अपनी लत के कारण बताती हैं परफेक्ट दिखने का दबाव, खालीपन, लेकिन इन्हें अपने अपराधों के लिए ढाल की तरह इस्तेमाल नहीं करती। वो मानती हैं कि शर्म से असली आजादी सच छिपाने में नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करने और जिम्मेदारी लेने में है।
ये बहुत हिम्मत का काम है, अपनी सबसे बड़ी गलतियों को ऐसे स्वीकारना।
जी। दूसरा स्तंभ है करुणामयी जिज्ञासा।
अच्छा,
ये क्या है?
ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी। मतलब लोगों को, खासकर हाशिए पर धकेले गए लोगों को, बिना जज किए समझने की कोशिश करना। जेल में उन्होंने साथी कैदियों की कहानियां सुनी, उनके परिस्थितियों को समझा, और जब ये जिज्ञासा उन्होंने खुद पर लागू की तो वो खुद से नफरत करने के बजाय अपनी कमजोरियों और गलतियों के पीछे के कारणों को समझ पाईं।
यानी सहानुभूति सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी।
बिल्कुल। और तीसरा स्तंभ है हर व्यक्ति का अंतर्निहित मूल्य।
यानी हर इंसान की अपनी कीमत है।
हाँ, ये गहरा विश्वास कि किसी इंसान की कीमत उसकी सबसे बुरी गलती से तय नहीं होती। कोई भी इंसान फेंकने लायक नहीं होता। मामा लव नाम इसी बात का प्रतीक था कि उनके अंदर की अच्छाई उनके अपराधों से बड़ी थी। ये उनके सुधार के काम की नींव है।
उनका सफर प्रेरणाओं का भी सफर है।
अगर हम उनके जीवन के तीन सबसे अहम मोड़ देखें जिन्होंने सब कुछ बदल दिया, तो वो कौन से होंगे?
मेरे ख्याल से पहला तो निश्चित रूप से वो पहली विकोडन प्रिस्क्रिप्शन ही थी।
हाँ, वो पहली गोली
सुनने में साधारण है, पर उसने उनके दिमाग की केमिस्ट्री बदली और नशे की वो ढलान शुरू की जिसने सब तबाह कर दिया। ये दिखाता है कि शुरुआत कितनी अनजानी हो सकती है।
बिल्कुल। और दूसरा?
दूसरा निर्णायक मोड़ था उनकी गिरफ्तारी और वो पुलिस रेड,
जब सब कुछ बिखर गया।
हाँ, वो उनके बनाए झूठे संसार का अंत था। इसने उन्हें उस सच्चाई का सामना करने पर मजबूर किया जिससे वो भाग रही थीं। एक जीवन का अंत जिसने दूसरे ज्यादा सच्चे जीवन की गुंजाइश बनाई। वो रॉक बॉटम था।
और तीसरा मोड़?
तीसरा जो मुझे भी बहुत छूता है, वो है जेल में मामा लव नाम मिलना।
हाँ, वो नाम।
उस अमानवीय माहौल में जहाँ वो सिर्फ एक नंबर थी, ये नाम उनकी इंसानियत की पुष्टि थी। ये उनके अपराध पर नहीं, उनके स्वभाव पर आधारित पहचान थी। इसने उम्मीद दी।
ये उस नई पहचान का बीज था।
सही कहा। और इसी से जुड़ा एक और पल भी अहम था, बाद में अपने बॉस डग एब्रम्स को सब सच बताना। वो कबूलनामा भी एक तरह की मुक्ति थी उस शर्म के भूत से।
तो हारियन की कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, इसमें हम सबके लिए भी सबक हैं। जैसे वो परफेक्शन का मुखौटा कितना खतरनाक हो सकता है।
बिल्कुल। और शर्म कितनी विनाशकारी हो सकती है अगर उसे छिपाया जाए। हार्डन का भूत वाला उदाहरण बहुत सटीक है। जब उन्होंने उसका सामना किया तभी वो आजाद हुई। ये हम सब पर लागू होता है।
और ये कहानी नशे की लत को एक बीमारी की तरह समझने में मदद करती है, ना कि सिर्फ एक नैतिक विफलता।
जी, और शायद सबसे बड़ा सबक ये है कि ईमानदारी और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने में, जिसे अंग्रेजी में वल्नरेबिलिटी कहते हैं, उसमें कितनी ताकत होती है।
हाँ, जब उन्होंने सच बोला
तो उन्हें सजा नहीं, समर्थन मिला, मुक्ति मिली। ये दिखाता है कि अपनी असलियत के साथ जीना, यानी प्रामाणिकता, मुश्किल हो सकता है पर अंत में ज्यादा मजबूत बनाता है।
तो इस पूरी चर्चा के बाद अगर हमें तीन मुख्य बातें कहनी हो तो वो क्या होंगी?
हाँ, तीन खास बातें जो इस कहानी से निकलती हैं। पहली, एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि। ये शर्म के बदलने वाले स्वभाव के बारे में है। हार्डन दिखाती हैं कि शर्म जब छिपाई जाए तो जहर है, लेकिन जब उसे ईमानदारी और जिम्मेदारी से स्वीकार किया जाए तो वो सहानुभूति, जुड़ाव और एक मकसद का जरिया बन सकती है। मामा लव नाम और उनका काम इसी बदलाव का प्रतीक है। शर्म को ताकत में बदला जा सकता है।
ये बहुत गहरा है। और बौद्धिक स्तर पर
दूसरी एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि, ये समाज में दोबारा शामिल होने, रीएंट्री की असली बाधाओं के बारे में है। कहानी दिखाती है कि कैसे एक क्रिमिनल रिकॉर्ड सजा के बाद भी लोगों को नौकरी, घर और सम्मान से रोकता है, एक अदृश्य कागजी जेल बना देता है।
हाँ, ये व्यवस्था पर सवाल उठाता है।
बिल्कुल, ये हमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी से आगे बढ़कर सिस्टम के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारा सिस्टम सच में दूसरा मौका देता है?
और तीसरा, वो सार्वभौमिक सबक।
तीसरा एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि और सबसे ज्यादा व्यावहारिक सबक ये है कि हम अपनी सबसे बुरी गलतियों का कुल जोड़ नहीं है। हर इंसान में बदलने, सीखने और योगदान देने की क्षमता होती है, चाहे उसने कितनी भी बड़ी गलती क्यों न की हो। ये हमें खुद को और दूसरों को, खासकर ठोकर खाने वालों को, ज्यादा करुणा से देखने की प्रेरणा देता है और दूसरे मौके के सही मतलब पर सोचने को कहता है।
तो लारा लव हार्डन की इस अविश्वसनीय यात्रा को समझने के बाद एक विचार जो शायद मन में रह जाता है,
वो शायद ये है कि हम दूसरा मौका देने की बातें तो बहुत करते हैं, पर क्या हम वाकई इसके लिए तैयार हैं, एक समाज के तौर पे और अपने अंदर भी?
क्या हम वाकई मानते हैं कि लोग बदल सकते हैं?
हाँ, हार्डन की कहानी हमें चुनौती देती है। क्या हम लोगों को उनकी आगे की संभावनाओं से देखते हैं या हमेशा उनके अतीत से ही बांधे रखते हैं? और यही सवाल खुद से भी पूछना चाहिए। क्या हम खुद को अपनी गलतियों से आगे बढ़ने की इजाज़त देते हैं? क्या हम वाकई बदलाव में यकीन रखते हैं, दूसरों के लिए और अपने लिए भी?
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।